कथाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुनवादी पाश्चात्य देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नाम एव केवलम्, कलौ नास्तेव 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 गत्यर्यन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदिरये मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरे। यत्कृपास्तमहं वंदे परमानंदमाधवं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 39। मासं पुमान सभविता मासं स्त्री तव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुदिम्नो अवतु मेदिनिम्। मासं पुमान सभविता मासं स्त्री तव गोत्रजाः इत्थं व्यवस्थया कामं सुदिम्नो अवतु मेदिनिम्। मासं पुमान सभविता मासं स्त्री तव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्युम्नो वतु मेदिनीम्। अवतु मेदिनीम्। मेदिना नहीं, मेदिनीम मेदिनीम। माताएं माताएं शब्दानुवाद मासम एक मास, पुमान पुरुष, सह सुद्युम्न, भविता बनेगा, मासम दूसरे महीने में, स्त्री स्त्री का अनुवाद क्या होगा? स्त्री महिला महिला स्त्री महिला नारी एक ही बात है। तब तुम्हारी तुम्हारा तुम्हारी लिखा हुआ यहां गोत्रजा तुम्हारे परंपरा में उत्पन्न हुए शिष्य इत्थम इस तरह व्यवस्थया समझौते से कामम इच्छानुसार सुद्युम्न राजा सुद्युम्न अब तो शासन करेगा मेदिनीम जगत पर। वास्तव में यहाँ पर ये दो श्लोक दिए गए हैं 38 और 39, तो अनुवाद एक के साथ है और तात्पर्य भी एक साथ है। तो हम पाठ कर लेंगे और इसके बाद और एक आध श्लोक है, आज ही अध्याय को समाप्त कर देंगे। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे राजा परीक्षित, मेरे पीछे पीछे दोहराइए, हे राजा परीक्षित, शिव जी वशिष्ठ पर अत्यंत प्रसन्न हुए, अतएव शिव जी ने उन्हें तुष्ट करने पार्वती को दिए गए अपने वचन रखने के लिए उस संत पुरुष से कहा, आपका शिष्य सुद्युम्न एक मास तक नर बनेगा, दूसरे मास स्त्री बनेगा। इस तरह वह इच्छानुसार जगत पर शासन करेगा। तात्पर्य, इस प्रसंग में गोत्रज शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण लोग सामान्यतया दो कुलों के गुरु होते हैं, एक कुल उनके शिष्य परंपरा होता है और दूसरा उनके वीर्य से उत्पन्न कुल होता है, वंश परंपरा। एक शिष्य परंपरा, दूसरी वंश परंपरा। दोनों ही वंशज एक ही गोत्र से संबंधित होते हैं। वैदिक पद्धति में कभी कभी देखा जाता है कि एक ही ऋषि की शिष्य परंपरा में ब्राह्मण क्षत्रिय लोग भी पाए जाते हैं और कभी कभी वैश्य तक भी पाए जाते हैं। क्योंकि गोत्र तथा कुल एक हैं, अतः शिष्य तथा वीर्य से उत्पन्न कुल में कोई अंतर नहीं होता। आज भी वही पद्धति भारतीय समाज में चली आ रही है। विशेषतया विवाह में गोत्र की गणना की जाती है। यहाँ पर गोत्र शब्द एक ही कुल में उत्पन्न लोगों को बताने वाला है, चाहे वे शिष्य हो चाहे वो कुल का कोई सदस्य हो। भूतिर्महद्भिर्यैमा पुरोविभो निर्मायसेते यदमूष पुरुषः भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृशिष्ठ भगवन् वचांसि मे। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि सलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यत समी ऋषिणाम ऋषभ प्रसिदता। हरे कृष्णा। आज तो बहुत ही नए लोग हैं, इतने लोग तो सप्ताह के अन्य दिनों में नहीं आते, नहीं आते ना। तो प्रसंग जो चल रहा है इसके बारे में कुछ लोग तो जानते हैं और अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे, तो हमें ये पता नहीं है कितने लोग इस प्रसंग के बारे में जानते हैं और कितने लोग इस प्रसंग के बारे में नहीं जानते हैं। तो कृपा करके हमें बतला सकते हैं कितने लोग जानते हैं, हाथ उठा करके, हमें कैसे पता लगेगा कितने लोग इस प्रसंग के बारे में नहीं जानते हैं, कृपया हाथ उठाइए। अच्छा, अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, माताओं में अधिकांश जानती है, चलो ठीक है। तो जानने वाले नहीं जानने वाले सभी का स्वागत है। प्रभुपाद जी की इस परंपरा में, हमारी संस्था में प्रातःकालीन भागवत सत्र एवं सायंकालीन गीता का सत्र चलता है। सत्र शब्द का अर्थ होता है जहां जाने से व्यक्ति का त्राण होता है, उसी का नाम है सत्र। अर्थात सत्संग में आने से व्यक्ति का कल्याण होता है, उद्धार होता है, इसीलिए इसका नाम है भागवत सत्र। प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है, भागवत के माध्यम से हम लोगों को प्रातःकाल नियमित रूप से सत्संग की प्राप्ति हो रही है। जो मानव समाज के लिए सर्व उत्कृष्ट कल्याण का साधन माना जाता है, श्रीमद् भागवतम शास्त्र परम कल्याण को देने वाला है। कारण श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण विराजमान है, इसीलिए कर्मकांड की पद्धति में जब क्रिया संपन्न होती है अथवा मध्य भाग में प्रारंभ में मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदन, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायतनो हरि ही, श्री कृष्ण के नख से लेकर शिख तक केवल मंगल ही मंगल है, वहां पर अमंगल नहीं है। अतः श्रीमद् भागवत ग्रंथ के मध्य श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान है, इसीलिए ये कल्याण करने वाली ग्रंथ है। ये निश्चित रूप से हम सबको जान लेना चाहिए, इससे श्रीमद् भागवत के प्रति रुचि बढ़ती है और अध्ययन अध्यापना करने के लिए लालसा बढ़ती है। तो ये तो भागवत की भूमिका रही। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भागवत हमें बहुत कुछ सिखलाती है। ये जो प्रसंग यहां चल रहा है ये एक अद्भुत प्रसंग है, अद्भुत प्रसंग। एक एक प्रसंग आपको बहुत बहुत तथ्य देने में समर्थ है। इस अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार सूर्य वंश से ही चंद्र वंश की उत्पत्ति होती है। चंद्र वंश की उत्पत्ति प्रारंभ में नहीं थी, सूर्य वंश से ही चंद्र वंश की उत्पत्ति होती है। मूलतः वंश एक है, वो है सूर्य वंश, और जिनके आदि राजा है भगवान विवस्वान, सूर्य देव को विवस्वान कहते हैं। तो प्रसंग की संक्षिप्त सूचना इस प्रकार से है। महाराज मनु सबसे पहले अप्रज थे। अप्रज शब्द का अर्थ होता है जिनकी कोई संतान नहीं होती है उसको अप्रज कहते हैं, अथवा देहाती भाषा में उस महिला को बंध्या कहते हैं, अथवा उस पुरुष को निसंतान कहते हैं, और संस्कृत की शुद्ध भाषा परिपाटी में उसे अप्रज कहते हैं, अर्थात उनकी कोई प्रजा नहीं हुई। प्रजा शब्द का अर्थ होता है प्रकर्षण जायते इति प्रजा, जिसकी उत्पत्ति की जाती है, जिसका पालन किया जाता है, उसी का नाम है प्रजा। तो देश का जो राजा होता है, सभी मानव समाज पशु समाज उसकी प्रजा कहलाते हैं। तो मनु महाराज सूर्य के पुत्र सर्वप्रथम अप्रज थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। वैदिक परंपरा के अनुसार यदि किसी की संतान नहीं होती है तो उनके लिए भी उपाय है। जैसे आजकल के संसार में यदि कोई निसंतान रहता है तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो खाने से मां गर्भधारण कर सकती है, ऐसा नहीं है, उसको भाग्य ही माना जाता है ना, ऐसा है कि नहीं। हो सकता है कोई कोई जादू टोना कर दे, कोई जड़ी बूटी दे दे, कुछ काम हो जाता है, परंतु मुख्यतया भाग्य पर विश्वास करके महिलाएं चलती है अथवा पिताजी लोग चलते हैं। परंतु पूर्व काल में वैदिक संस्कृति में ऐसी असंभावनाएं नहीं थी, अर्थात कोई निराशा नहीं थी, आशा की उज्जवल किरणें थी। इससे हम आगे व्याख्या करेंगे। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, संतान हो जाएगी। यदि हम हरि की शरण में आते हैं तो होनी अनहोनी और अनहोनी होनी में परिवर्तित होती है। इसका दृष्टांत भरा हुआ है शास्त्र में।
होलिका को वरदान मिला था, वो जिसको गोद में लेकर के अग्नि में जाती थी वो मर जाता था, उसको अग्नि जला डालती थी पर होलिका नहीं जलती थी। परंतु प्रहलाद परम भक्त को होलिका गोद में लेकर के गई और होलिका जल करके राख हो गई, प्रहलाद का बाल तक बांका नहीं हुआ। यही प्रभु की विशेषता है, जो होने वाला है वो नहीं होता है, जो नहीं होने वाला वो हो जाता है। हिरण्यकश्यप को अमरत्व का वरदान था, वो सोचा था कि हम नहीं मरेंगे, लेकिन भगवान नरसिंह के हाथों से वो मारा गया। मार्कंडेय जी को वरदान था कि 12 साल में मर जाएगा, परंतु वो अमर हो गए। भागवत की शिक्षा मेरे प्रभु मेरे मित्रों केवल शाब्दिक शिक्षा नहीं है, ये जीवन में एक आशा की किरण जगाती है कि यदि हम भागवत की शरण लेते हैं, हरि की शरण लेते हैं, तो हमारी आशा की किरण कभी खत्म नहीं होती है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आशा बंध समुत्कंठा, हम भक्तों को आशा के साथ श्री कृष्ण को जोड़ देना चाहिए, हमारी आशा की पूर्ति अवश्य होगी। शुद्धिम्न महाराज, क्षमा कीजिए, मनु महाराज जब अपरज थे, उन्होंने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया, लोग हमें छिछी करेंगे, लोग हमारी निंदा करेंगे, हमारा राजा है परंतु उसकी कोई संतान नहीं है, भारतीय परंपरा आज भी है, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं जिसकी कोई संतान नहीं होती है, ये के बड़ी बड़ा कुसंस्कार है, कुप्रथा है। जैसा भी हो, महाराज जी के मन में असंतोष रहा, उन्होंने अपने गुरुदेव से निवेदन किया, यदा कदा विपत्ति आती है व्यक्ति को चाहिए कि वो गुरु के पास चला जाए। गुरुदेव के चरण कमल बड़े मंगलमय और कल्याण को देने वाले होते हैं, जिनके गुरु नहीं होते हैं वे सबसे दुर्भाग्य माने जाते हैं, क्योंकि उनको शरण देने वाला कोई नहीं होता, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। गुरु के माध्यम से व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, इसीलिए प्रत्येक प्रातःकाल हम लोग कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात नगति कुतोपी। अगर श्रीहरि के कृपा हमें प्राप्त करनी है तो गुरु की शरण में जाना बहुत ही आवश्यक है। मनु महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने विचार किया, गुरु वशिष्ठ के शरण में जाएंगे तो हो ना हो हमारी आशा की पूर्ति हो जाएगी। वशिष्ठ महाराज श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी में भी जितनी शक्ति है वशिष्ठ में भी हूबहू उतनी शक्ति है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ। तो श्री वशिष्ठ के श्री चरणों में जब मनु महाराज ने निवेदन किया, हे गुरुदेव आप हम पर कृपा करिए और हमको संतान देने का उपाय करें, यहां पर प्रभुपाद जी ने लिखा है गोत्रज शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी जो आए हैं आश्रम से तो हम सबका गोत्र होता है, अलग अलग गोत्र है। हमारे पूर्वाश्रम में हमारा गोत्र था शांडिल्य, तो शांडिल्य मुनि नंद महाराज जी के गुरु माने जाते हैं, इसलिए उनके परंपरा में जो शिष्य परंपरा है उनके सबके गोत्र शांडिल्य माने जाएंगे। वशिष्ठ जिस परंपरा के गुरु है उनको उनके गोत्र वशिष्ठ माने जाएंगे। गोत्र का अर्थ निरुक्त में कहा गया है, गोत्रम वंशेच नामनी पर्वतीच महेश्वरे। मुख्यतया गोत्र दो प्रकार से चलता है, एक वंश के रूप में और एक शिष्य के रूप में। वशिष्ठ के वंश में जो भी उत्पन्न हुए उनका गोत्र होगा वशिष्ठ गोत्र, और वशिष्ठ के परंपरा में जितने शिष्य आए उनका भी गोत्र होगा वशिष्ठ गोत्र। इसीलिए गोत्र बहुत महत्वपूर्ण है, विवाह संबंध में गोत्र की मान्यता बहुत है। देखा जाता है यदि वर वधू दोनों में मेल नहीं खा रहा है तो उनका विवाह नहीं देना चाहिए। कहा जाता है समान गोत्र में विवाह निषेध है, ऐसा सुना है हमने, दूसरे दूसरे गोत्र का होना चाहिए, ठीक मिलता है। जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, कभी कभी लोग हमसे भी पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोग ज्योतिष शास्त्र को मानते हो, ऐसा पूछा करते हैं। वास्तव में ये उनकी अज्ञता है। जैसे वेद है, वेद का एक अंग का नाम है ज्योतिष, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिषाम, वेद का एक अंग का नाम है ज्योतिष शास्त्र। श्री चैतन्य महाप्रभु का जब प्राकट्य हुआ था, उस समय उनके नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती ने गिन करके बता दिया था कि ये लड़का, ये बालक महापुरुष होगा। गौतम बुद्ध के जन्म के समय महापुरुषों ने, ज्योतिर्विदों ने बताया था, ये या तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा या तो के महान सन्यासी होगा। परीक्षित महाराज जी के जन्म के समय ज्योतिषों ने बताया था, इनका सब है, बहुत कुशल मंगल रहेगा, लेकिन अंतिम समय तक्षक के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ज्योतिष गणना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कमी इस बात की है, गणक नहीं है, गणना करने वाला नहीं है। पहले काल में, पूर्व काल में बहुत ऐसे गणक हुआ करते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई गणक नहीं है, ज्योतिष शास्त्र की बहुत बड़ी महिमा है, पर मेरे कहने से आप ऐसे ही हाँ उद्विग्न होकर के किसी ऐसे मूर्ख ज्योतिष के पास मत जाना, वो आपको गिन करके सब उल्टा काम बताएगा, हमें इसकी अनुभूति है। तो ये सब विद्या का विलास है, बहुत कुछ विद्या है। तो श्री मनु महाराज अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ के शरणागत होते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, कोई बात नहीं, आप धीरज रखो। तो श्री वशिष्ठ जी श्री कृष्ण के, श्री विष्णु की आराधना करते हैं। इस अध्याय का ये महत्वपूर्ण प्रसंग है, हम भक्तों को भी जान लेना चाहिए। यदि संतान नहीं है तो संतान के लिए यज्ञ पुरुष की आराधना की जा सकती है। यदि कोई माता 12 दिन तक पयोव्रत धारण करती है तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, जैसे अदिति को हुआ था। अदिति ने 12 दिन तक पयोव्रत धारण किया था और उनके परिणाम के स्वरूप उनके गर्भ में साक्षात से वामन देव का आविर्भाव हुआ। ये कितना बड़ा भाग्य है। इसीलिए शायद कवियों ने कहा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा मन, बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। तुम क्यों उदास बनते हो? अगर तुम्हारी नैया, तुम्हारे नैया के खेवैया और नाविक साक्षात श्री हरि है तो उदास बनने की क्या आवश्यकता है? इसलिए भक्त बेपरवाह रहता है, भक्त बिल्कुल पागल सा रहता है, उन्मत्त रहता है। हाँ? लोग कहते हैं भक्त ज्ञानी निखट्टू भक्त बावरे नहीं, एक बढ़िया कहावत हमारे ब्रज में कहते हैं, हाँ, योगी रोगी भक्त बावरे ज्ञानी बड़े निखट्टू, कर्म कांडी ऐसे डोले जैसे भाड़े की टट्टू। बोले योगी रोगी जो योग साधन करेगा उसका शरीर दुबला पतला रहेगा, तो लोग कहेंगे कि इनको कोई बीमारी हुई है, बीमारी नहीं हुई है, तो योगी रोगी जैसा लगता है, इसलिए कहते हैं योगी रोगी। और भक्त बावरे, भक्त बावरे माने भक्त पागल सा रहता है, लोक बाह्य, वो लोगों की परवाह नहीं करता। भगवान शंकर नंगे रहते हैं, पार्वती वहीं डोलती फिरती है, उनको किसी की परवाह नहीं है, चाहे लक्ष्मी जी आ जाए, चाहे ऋषि महर्षि सन्यासी साधु जति तपी सब आ जाए, परंतु शंकर ऐसे नंग धड़ंग घूमते रहते हैं, दिगंबर है। कहा जाता है सुखदेव गोस्वामी दिगंबर है, बहुत सारे जैन मुनि भी दिगंबर है, उनको संसार की परवाह नहीं है, लोग हमें अच्छे कहे, लोग हमें बुरा कहे। इसीलिए यहाँ ब्रज के कवियों ने कहा कि योगी रोगी भक्त बावरे, भक्त तो पागल से घूमते हैं और ज्ञानी बड़े निखट्टू। ज्ञानी कुछ नहीं करता, वो कहता है संसार मिथ्या है, माया है, हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठकर ओंकार का जप करता है। और दूसरे लोग कहते हैं तू बड़ा निखट्टू है, ये संसार से डर करके जप कर रहा है, भाग गया, ये एक भगोड़ा है। इसीलिए कहते हैं योगी रोगी भक्त बावरे, ज्ञानी बड़े निखट्टू और कर्म कांड अपने डब्बा लेकर के और इधर उधर घूमता है, कहां पे कहीं प्रोग्राम मिलता है। तो कर्म कांडी ऐसे डोले जैसे भाड़े की टट्टू, उनको भाड़ा चाहिए, भाड़ा दे दो, 500 एक दक्षिणा दो, वो तुम्हारे घर पे जाके कर देगा, कर्म कर देगा। वशिष्ठ जी ये पुरोहित है, सूर्यवंशी पुरोहित माने जाते हैं। पुरोहित माने पुराणाम हिता करोति जैसा पुरोहित, पुर है, वंश है, उसका जो हित करे वो पुरोहित है, केवल ऐसे ही दक्षिणा नहीं लेता। तो मनु महाराज जी को आश्वासना देकर के वशिष्ठ ने मित्र वरुण इष्टि कराया, एक यज्ञ कराया। तो उस यज्ञ में जैसे आप लोग जानते हैं चार लोग होते हैं, होता होते हैं, उद्गाता होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, अधर्यु होते हैं, इनके सब अलग अलग विभाग है। तो यजमान के इच्छा के अनुसार, संकल्प के अनुसार होता आहुति देता है, हमको पुत्र चाहिए, तो पुत्र संकल्प करके जब होता आहुति देता है तो उसका संकल्प फलित होता है। परंतु मनु महाराज जी का नाम था श्राद्ध देव, उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। अब पता नहीं उस समय की बात तो ऐसी थी, आजकल की माताएं तो पुत्र चाहती है, परंतु वो श्रद्धा देवी ने कहा मैं भी श्रद्धा हूं, मैं भी महिला हूं, तो मुझे के बालिका चाहिए। तो उन्होंने होता से कह दिया कि आप बालिका को संकल्प करके आहुति डालो। तो जब संकल्प दिया गया, आहुति दी गई, उससे जो चरु मिला और आगे चल करके उसका भोजन करने से श्री मनु महाराज जी को ईला नाम की पुत्री की प्राप्ति हो गई। मनु महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मनु महाराज मस्तक पर हाथ रखते हैं, ऐसा विपर्यय क्यों हुआ? ब्राह्मणों का वाक्य और मंत्र का कभी विपर्यय नहीं होता। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कृष्ण, कृष्ण नाम जप करने वाले कभी निराशी नहीं होते हैं, उनको कभी ना कभी कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है, ये आशा रख करके ही जप करना चाहिए। यही भक्तों के लिए आशा की किरण है। श्री वशिष्ठ महामुनि ने कहा महाराज मनु तुम आशा बना के रखो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। हम भक्तों को इस अध्याय से ये गंभीर बात को शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी निराशा नहीं होना चाहिए। हमारे विचार से तो निराशावाद ही नास्तिकवाद है, हम कभी निराश नहीं होते। भक्त अगर निराश हो गया तो मर गया। इसलिए भक्ति की जो भूमिकाएं हैं, शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाक्षणे प्रीति तद वसती स्थले एतादयोर अनुभवा शुभ भावांकुरे जने। जिसके चित्त में भाव पैदा हुआ है वो कभी निराशा नहीं होता। गोपियां इसलिए प्राण धारण किए हुए रहती थी कि उनको पता था एक दिन हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्णचंद्र ब्रज आएंगे, ये भाव है। कभी भी निराश मत होना, श्री कृष्ण के प्रभु के शक्ति पर भरोसेमंद होकर के रहना, यही है भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या है प्रभु? सारी परिभाषा को छोड़ दीजिए, भक्ति का एक ही परिभाषा है, उसका नाम है विश्वास। यदि विश्वास नहीं है चित्त में तो हमारी भक्ति केवल कोरा कागज ही कागज है। अंततः आप देखोगे मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। केवल भक्ति का आधार है विश्वास। जिसके जीवन में विश्वास नहीं है तो उसके उसके जीवन में जो भक्ति है वो भक्ति माता बांझ है। विश्वास के बिना भक्ति नहीं है। श्री हनुमान जी जब लंका से आ जाते हैं तो श्री रामचंद्र पूछते हैं, माता का पता लगा? लगा है। प्रभु और अधिक आग्रह होकर के पूछते हैं, सीता कैसे प्राण धारण किए हुए रहती है, कैसे उसके प्राण टिकते हैं? श्री हनुमान जी बड़े मार्मिक उत्तर देते हैं, नाम पाहेरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए के ही बाट। श्री सीता जी इसी ध्यान में रहती थी कि मेरे प्रभु आएंगे, नाम पाहेरु दिवस निसी। देखो जो पुण्यशाली है, जो भाग्यशाली है, उनके प्राण नीचे के द्वार से नहीं जाते हैं, उनके प्राण ऊर्ध्वगामी होकर के जाते हैं। मान लीजिए सीता जी के प्राण जाए भी तो मुख के द्वार से, तो हनुमान जी कहते हैं उनके मुख पर दो पहरेदार है, क्या है? राम, नीचे के होंठ पे रा और ऊपर के होंठ पे मां है, तो वो प्राण को नहीं छोड़ेंगे। बोले मान लीजिए नेत्रपथ होकर के प्राण चले जाएंगे, लोचन निज पद जंत्रिता, श्री सीता जी के नेत्र कमल, नेत्र के जो भृंग, नेत्र चकुर सदैव राम के चरणार बिंदु का मकरंद पान करते थे, इसीलिए उनके नेत्र होकर के भी प्राण नहीं जा सकते। बोले हृदय से सीधे चले जाए? बोले ध्यान तुम्हार कपाट। बोले हृदय से जाए कैसे? तो ध्यान रूपी कपाट सीता जी ने बंद करके रखा है, इसीलिए उसके प्राण नहीं जा सकते। सीता जी सदैव कहती थी राम 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 राम। इस तरह से कृष्ण भक्त सदैव कहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी का नाम है आशा। ये कोई छोटी आशा नहीं है, आशा बंध, ये आशा की डोरी है, ये श्री कृष्ण की चरण में बंधी हुई है। दीन बंधु दीन नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मैंने अपने नैया की डोरी तेरे हाथों पे सौंप दी है, हे प्रभु ये तेरा ही कर्तव्य, तेरा कर्तव्य है, तुम मारना हो तो मार ले, तारना हो तो तार ले, ये भाव है, ये प्रभु की शरणागति है। तो मनु महाराज शरणागत हो जाते हैं और मित्र वरुण इष्टि होती है, यज्ञ होता है, इला की प्राप्ति पर मनु महाराज जी का भरोसा टूट जाता है। ऐसे कैसे हो गया? ब्राह्मणों के द्वारा जो मंत्र का उच्चारण हो गया उसका फल विपरीत कैसे हो गया? यदि पुत्र कह करके अपने आहुति दी है तो उससे पुत्र पुत्री कैसे हो गई? इससे वेद की अमर्यादा हो जाएगी, इसमें इससे ब्राह्मणत्व का तिरस्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब आधारियों ने जब निरीक्षण किया तो पता चला कि मनु महाराज जी की पत्नी ने कहा था, निवेदन किया था होता से, होता की कोई गलती नहीं थी। अब क्या होगा? राजा को पुत्र चाहिए, अन्यथा राज्य शासन कौन करेगा? फिर देखिए, फिर वशिष्ठ ने कहा कोई बात नहीं है, हम फिर इसको बदल देंगे। फिर वशिष्ठ जी श्री विष्णु के शरण में जाते हैं। देखिए कहीं भी कुछ होता है उसका मूल कारण श्री हरि ही है। यदि हमें ऐसी कुछ चीज प्राप्त है जो नहीं मिटने वाला है, यदि हम हरि के शरणागत होते हैं वो मिट जाता है। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में निराश हो जाना नास्तिक बात है, इसको लिख रखिएगा, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कितने प्रमाण देंगे? ये तो बहुत प्राचीन प्रमाण है, हम आपको एक आधुनिक प्रमाण देते हैं, अर्वाचीन प्रमाण देते हैं। श्री जगन्नाथ जी की पुरी की बात है, उनके प्रधान सेवक का नाम था श्री पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव को पता लगा कि कांची नरेश की कन्या पुत्री पद्मावती अत्यंत रूपवती है। उन्होंने पत्र लिखा कि पद्मावती का परिणय हमसे होना चाहिए, हम उससे विवाह करना चाहते हैं। बस इस बात सुनकर के उस अभिमानी राजा कांची नरेश ने कहा, मैं मेरी पुत्र का विवाह किसी झाड़ूदार से नहीं कराना चाहता हूँ। ये पत्र लिख दिया कि हमारी पुत्री का विवाह किसी झाड़ूदार से नहीं हो सकता, मेरी पुत्री राजपुत्री है, पद्मा है, पद्मावती का विवाह वो पुरुषोत्तम देव जैसे झाड़ूदार से हम नहीं कराना चाहते हैं। झाड़ूदार क्यों कहा? क्योंकि जब भी रथ यात्रा होती है वहां उत्कल नरेश का ये कर्तव्य, ये सेवा रहती है, वो रथ चलने के पूर्व वो रथ पर झाड़ू करते हैं। देखिए यही सेवक है। सेवक चाहे कितना भी बड़ा हो उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए, वो सेवक झाड़ू कर सकता है। तो पुरुषोत्तम देव झाड़ू करते थे, इसीलिए उस अभिमानी राजा ने कहा ये झाड़ूदार है। तो इस बात पुरुषोत्तम देव के लिए असहनीय थी। उन्होंने मंत्री से कहा, आमात्यों से कहा कि तुरंत कांची के लिए अभियान चलाया जाए, कांची के लिए सेना की तैयारी की जाए। तो तुरंत तैयारी हो गई और कांची पर चढ़ाई कर दी गई। परंतु दुर्भाग्य की बात थी, उस बार पुरुषोत्तम महाराज की पराजय हुई। बड़े दुख से आगे और पुरुषोत्तम देव, देखिए राजा ये जैसे मनु महाराज हैं, पुरुषोत्तम देव श्री जगन्नाथ जी की शरण में जाते हैं। वास्तव में आज भी वो परंपरा पूरी में है। जब भी दारू का संग्रह होता है नवकलेवर यदि भाग्य में हो तो 2019 को नवकलेवर होने वाला है। साक्षात जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी के नए विग्रह बनेंगे। हमने एक नवकलेवर देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने देखा है उस वृक्ष में कितने दिव्य दिव्य चिन्ह होते हैं। एक वृक्ष के नीचे 9 नाग सांप थे। जिस दिन उस वृक्ष की कटाई हुई उस वृक्ष की जड़ से 9 नाग कोबरा एक एक करके निकल के चले गए, हमने देखा है। ये सब कई चीजें अद्भुत चीज है। जिनको कृष्ण पर विश्वास नहीं है, जगन्नाथ पर विश्वास नहीं है, नवकलेवर देख लें, 2019 में आने वाला है। बड़ी विचित्र विचित्र लीला है प्रभु की, तो उस विषय पे हम नहीं जाते। तो पुरुषोत्तम देव श्री जगन्नाथ जी की शरण में आ जाते हैं। शरण में आने के बाद प्रभु ने कहा, प्रभु मैंने आपका आश्रय लिया है। भक्त कहता है दीन दयाल सुनी जबते, दीन दयाल सुनी जबते, मेरे मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाई के जाऊं कहां, प्रभु तेरे ही नाम की फेंट कसी है। ऐसा ही है, एक ही आसरा प्रभु हमको, एक ही आसरा प्रभु हमको, तेरे समान ना दूजो जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहो, ए हो मुरारी पुकारी कहो, या में मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। यदि मेरी पराजय हुई है तो लोग आप पर विश्वास क्यों करेंगे? कहेंगे जगन्नाथ एक काष्ठ का विग्रह है, पुरुषोत्तम देव की क्या शक्ति है, क्या चलता है, प्रभु इस विपत्ति से हमारा उद्धार करो। जगन्नाथ जी परम दयालु है, उनका नाम है दीनदयाल। आज भी उनका जो झंडा है जगन्नाथपुरी में, उस झंडा का नाम है पतित पावन। यदा कदा किस पर विपत्ति आती है, आज भी हम आपको लिख के देते हैं, आप जगन्नाथपुरी चले जाइए, एक झंडा बांध दीजिए उसके उस नील चक्र पर, आपकी मनोती पूरी हो जाएगी, आप करके देख लीजिएगा। हाँ ये सच्ची विपत्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी के गर्दन काटना चाहते हो और झंडा बांधोगे, ऐसा नहीं है। कहीं आप उस विपत्ति के योग्य नहीं है, आप पर ऐसी आफत आ गई, आप जाकर के पतित पावन से प्रार्थना करके झंडा बांध दीजिए, आपकी विपत्ति टल जाएगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी है। इसीलिए एक कलियुग में तीर्थ के रूप में माना गया है नीलाचल पुरी, ये प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है। तो जगन्नाथ जी से निवेदन किया और कई दिनों तक राजा ने उपवास किया। उनके सपने में जगन्नाथ जी आए, बोले राजा धीरज रखो, इस बार तुम कांची पर चढ़ाई कर दो और तुम्हारी विजय निश्चित है। राजा आ जाते हैं, परम प्रसन्नता उन्हें प्राप्ति होती है, परमानंद के साथ अपने अमात्यों से कहते हैं अब की बार कांची पर चढ़ाई कर दी जाए। तो कांची पर जब चढ़ाई कर दी गई, आप विश्वास करेंगे कि श्री जगन्नाथ और श्री बलदेव एक गोरे सैनिक के रूप में, एक काले श्याम सुंदर सैनिक के रूप में, और काले घोड़े और श्वेत घोड़े पर विराजमान होकर उस पुरुषोत्तम जी की सेना के टोली में चले जाते हैं। तो प्रमाण के रूप में एक प्रमाण आता है, जब कांची पर चल रहे थे तो रास्ते में श्री जगन्नाथ श्री बलदेव काले घोड़े श्वेत घोड़े पर श्वेत अश्व पर और कृष्णकाय अश्व पर चढ़ के जा रहे हैं, उनको रास्ते में प्यास लगी। रास्ते में एक ग्वालिन थी, वो दधि बेचती थी, तो वहां जाकर के दोनों ने कहा, अरे ग्वालिन हम बड़े प्यासे हैं, क्या हमें थोड़ा तू छाछ पिला देगी, क्योंकि आप सब जानते हो हमारे प्रभु को छाछ माखन खाने की आदत है। तो प्रभु ने कहा, उड़ीसा प्रांत में इस दक्षिण भारत में छाछ और माखन ज्यादा नहीं मिलता, उत्तर भारत में ब्रज गोकुल में बहुत छाछ और माखन मिला करता है, ठीक है तू छाछ बेचती है, कृपा करके हमें थोड़ा छाछ पिलाए दे। ग्वालिन ने कहा, छाछ के बदले तुम हम क्या दोगे हमें। तो उन्होंने कहा, हम तो राजा की सेना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, एक काम करना, हमारे पास दो मुद्रिका है, एक मुद्रिका है। तो श्री बलराम जी अपने अंगूठी से एक मुद्रिका निकाल करके उस ग्वालिन को देते हैं और कहते हैं, पीछे राजा आ रहा है और उस राजा को दिखा देना, राजा तुम्हें उचित मूल्य दे देगा। प्रभु चले जाते हैं। आगे चल के थोड़े समय के पश्चात राजा पुरुषोत्तम देव आ जाते हैं और वो बेचारे ग्वालिन उनके चरणों में गिर जाती है। बेचारी ग्वालिन थी, कहां बुद्धि होगी। उन्होंने कहा, हे राजन, पर सत्यवादिनी थी, देखिए और कोई होती तो वो कहता, दो पैसे के लिए हमें स्वर्ण की मुद्रिका प्राप्त भई है, हम राजा के पास क्यों जाएं। ये है सत्यता। कल हम प्रभु जी के घर में गए थे, शाम को श्रीधर का प्रसंग पढ़ रहे थे। यद्यपि श्रीधर एक बहुत ही चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत आदर के पात्र और निजी पार्षद थे और बहुत थोड़े ही पैसा में अपनी गुजर बसर करते थे, पर बड़े सत्यवादी थे, व्यापार करते थे। व्यापार था केले के दोनों को लेकर के बाजार में बेचना, जो भी कुछ प्राप्त होता था उसे आधे पैसा आधे अर्थ तो गंगा की पूजा में व्यय कर देते थे और आधे अर्थ से अपने परिवार की गुजर बसर करते थे। बड़े सत्यवादी थे। इसलिए वो जो ग्वालिन है, वो ग्वालिन राजा के कृपा पात्र बन गई, और जो श्रीहरि के कृपा पात्र बनी और वो राजा के कृपा पात्री बन गई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वो ग्वालिन आकर के कहती है, हे राजन, ये मुद्रिका देखिए और मेरे से छाछ पिए दही पिए, और आपके दो सेना एक श्वेत काय अश्व पर विराजमान है और एक कृष्ण काय अश्व पर विराजमान है, और वो दोनों आगे आगे गए और हमें ये मुद्रिका दे करके गए हैं। राजा उस मुद्रिका को देख करके भू चौंके रह जाते हैं, वो आश्चर्य के सागर में डूब जाते हैं, ये तो मेरे प्रभु जगन्नाथ जी की मुद्रिका है। राजा को विश्वास हो जाता है कि अब की बार विजय तो निश्चित ही है, मेरे प्रभु इस सेना में जा रहे हैं, इस सेना में आ गए हैं, फिर तो विजय निश्चित है। तो उस पर भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध में कांची नरेश की पराजय होती है और राजा की आज्ञा से पद्मावती को कैद करके वो मंत्री ले आते हैं। और पुरुषोत्तम देव कहते हैं, इस पद्मावती का विवाह किसी झाड़ूदार से करा दो, क्योंकि उन्होंने मुझे झाड़ूदार कहा था। देखिए, सबकी आशा होती है, हम शुरू से कह रहे हैं, आशा की किरण, यदि हम संसार के प्रति आशा रखते हैं वो आशा हमारी कभी भी तृप्त नहीं होगी, यदि हम कृष्ण के प्रति आशा रखते हैं वो आशा कभी नहीं डूबेगी, ये भाव है। तो ज्यों ही पद्मावती आती है, तो पद्मावती एक राजकुमारी है, उसका विवाह झाड़ूदार से कैसे हो सकता है। राजा तो क्रोध में कह दिए हैं, मंत्री बड़े चतुर थे, बोले ठीक है, पद्मावती का विवाह हम किसी झाड़ूदार से ही कराए देंगे। तो आगामी रथ यात्रा का अवसर आ जाता है। रथ पर जिस समय पुरुषोत्तम देव झाड़ू करते हैं, बुद्धिमान महामंत्री पद्मावती को लेकर के पुरुषोत्तम देव के सम्मुख खड़ा कर देते हैं और पद्मावती से निवेदन करते हैं, अब ये झाड़ूदार है, इनके गले में वरणमाला डाल दो। पद्मावती की इच्छा पूरी हो जाती है और पुरुषोत्तम देव कहते हैं, मंत्री तुम ये क्या कर रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो। मंत्री हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, आपने मुझे जो आज्ञा दी थी मैं सो पालन कर रहा हूँ। मैंने आज्ञा दी थी कि इस पद्मावती का परिणय किसी झाड़ूदार से ही होना चाहिए, न भगवान आप इस समय झाड़ूदार ही हो। आप इस समय श्री जगन्नाथ जी के झाड़ूदार हो। तो ये कह करके पुरुषोत्तम देव को मंत्री अपने वाक् चातुर्य से परास्त कर देते हैं और पुरुषोत्तम देव के साथ पद्मावती का परिणय हो जाता है, विवाह हो जाता है। तो मैं ये प्रसंग इसीलिए कहा कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सदैव कृष्ण भजन में कभी भी विपत्ति आ सकती है, कभी भी विपत्ति आ सकती है। पग पर कितना दृष्टांत हम देंगे, दृष्टांत देते चलेंगे तो हमारी ट्रेन चली जाएगी, हम नहीं जा सकते हैं। इसी भागवत में भी है, वसुदेव के नासिका तक पानी आ जाता है फिर भी वो आशा नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य राखीवे कृष्ण विश्वास पालन, निश्चित कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। और एक प्रसंग देखिए, उसी जगन्नाथ की कथा, आज जगन्नाथ जी का प्रसंग याद आ गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वत जी का तिरुभाव है, इसीलिए प्रभु को देखकर हमें याद आ गया। कई प्रसंग हैं, आविर्भाव आविर्भाव तिथि है किसका, भक्ति सिद्धांत सरस्वत जी का और गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का तिरुभाव और पुरुषोत्तम, इसलिए पुरुषोत्तम जी है श्री जगन्नाथ देव। उनके एक भक्ता थी, एक ब्राह्मणी, वो परम भक्ता थी श्री जगन्नाथ जी की। उस समय मुसलमानों का शासन था, उस मुसलमान मलेच्छ का नाम था लाल बेग। उसने उड़ीसा पर चढ़ाई कर दी और एक स्थान का नाम है दांड मुकुंदपुर। मुकुंद माने श्रीहरि, उनके नामानुसार उस क्षेत्र का नाम है दांड मुकुंदपुर। तो जब लाल बेग उस पुरी के लिए जा रहा था, उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया था, ये ब्राह्मणी कहीं सरोवर में स्नान कर रही थी तो लाल बेग की कुदृष्टि उस ब्राह्मणी पर पड़ी और वो ब्राह्मणी अपरूपा सौंदर्य वाली थी। लाल बेग ने उसका अपहरण किया। अपहरण बेचारी अबला क्या कर सकती थी, परंतु लाल बेग से उन्होंने निवेदन किया कि मेरा एक व्रत है, यदि मेरा व्रत को आप मानेंगे तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ, अन्यथा मैं आत्महत्या कर दूंगी। लाल बेग ने कहा, क्या तुम्हारी शर्त है? ना, मैं आजीवन जगन्नाथ जी की सेवा करती रहूंगी। लाल बेग ने कहा, ठीक है, करती रहोगी। तो लाल बेग को स्वीकार किया और ब्राह्मणी से लाल बेग के वीर्य से एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम पड़ा साल बेग। फिर एक बार युद्ध हुआ, उस युद्ध में लाल बेग तो मारा गया और साल बेग अतिशय घायल हो गए। जीवन की आशा नहीं थी। आप लोग जानते हैं भारतीय महिला विदेशी महिलाओं की तरह नहीं होती है। आजकल तो ऐसा हो गया कि दो चार पुत्रों को संतान को छोड़ करके भी उस महिलाएं किसी दूसरे पुरुष के पास चली जाती है, परंतु ऐसा प्राचीन संस्कृति, ऐसी भारतीय परंपरा नहीं है। वो ब्राह्मणी यद्यपि जानती थी कि ये जो मुसलमान, ये लालवे के औरत से ये जन्म लिया है शालवे, फिर भी मेरा पुत्र है, वो उनकी सेवा करती थी। तो उस रोग सैया पर पड़ा पड़ा सालबेग उस मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, कब मेरी मृत्यु आने वाली है। मां के आंखों से, नेत्रों से अविरत अश्रुपात होता था, मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला जाएगा, कैसे जाएगा। तो उनके गुरुजी जो थे, उन्होंने गुरु की शरण में गई। देखिए, जैसे मनु महाराज गुरु के शरण में जाते हैं, वो भी गुरु के शरण में गई। गुरु ने कहा, बेटी, इस विपत्ति से बचाने वाले केवल जगन्नाथ ही है, और तुम 7 दिनों तक जगन्नाथ का मंत्र जप करो और साल भेग के कान में ये मंत्र कह दो, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। तो माता ने उपवास किया, रोग सज्जा पर तो साल भेग पढ़ाई था, तो 7 दिन 7 रात तक साल भेग की माँ जगन्नाथ जी का मंत्र जप किया और सालबेग के मंत्र कान में भी वो मंत्र दे दिया था कि बेटा, अब जीने की कोई आशा नहीं है, आशा के किरण मात्र भगवान नाम है। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, इसी मंत्र का जप करो। जो ही सालबेग ने 7 दिनों तक इस मंत्र का जप किया, सात दिनों के बाद एक अद्भुत करिश्मा हुई, एक ऐसा चमत्कार हुआ, श्री साक्षात जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं और साल्वे के मस्तक पर अपना करकमल का स्पर्श देते हैं और स्पर्श मात्र से ही साल्वे के संपूर्ण स्वस्थ हो जाता है, उनका दिव्य शरीर उनको प्राप्त हो जाता है। ये एक विचित्र सृष्टि है। तो साल्वे की जो भी पीड़ाएं थी वो पीड़ाएं हमेशा हमेशा के लिए तिरोहित हो जाती है और एक दिव्य पुरुष के रूप में साल्वे प्रतिमान होते हैं। और माँ के पास आकर के साल्वे कहते हैं, माँ कहती है, बेटा साल्वे तेरे तुझे बचाने वाले जगन्नाथ जी है, इसलिए तू जगन्नाथ का ही है। तब श्री साल्वे कहते हैं, मेरे माँ, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे रक्षक, मेरे पालक जगन्नाथ है, इसलिए मेरा जीवन ही जगन्नाथ जी के लिए समर्पित है। तब से श्री साल्वे जगन्नाथ जी के भजन की रचना करी, जगन्नाथ जी के परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। आज भी रथ यात्रा के समय जब जगन्नाथ जी निकलते हैं, साल्वे के समाधि के पास आज भी खड़े रहते हैं, मानो जगन्नाथ जी आज भी कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसको कभी नहीं भूलता। साल्वे तुमने हमारा भजन किया है, मैं भी तुमको याद रखता हूँ, मैं भी तुम्हारा स्मरण करता रहता हूँ। इसी प्रकार श्री जगन्नाथ जी की, श्री हरि की कथा अपरंपार है, लीला अनंत है, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो प्रसंग के अनुसार, प्रसंग तो कोई ज्यादा है नहीं, तो फिर मनु महाराज श्री अपने गुरुदेव वशिष्ठ के शरण में जाते हैं। पुत्री हो गई, अपने विष्णु के शरण में आए, मंत्र जप किया, पर हमें पुत्र चाहिए। तो फिर क्या करते हैं वशिष्ठ जी, श्री हरि के कृपा से उसको पुत्र बना देते हैं। वही ईला आगे चल के क्या बन जाती है, वो पुत्र बन जाती है। तो उसका नाम होता है सुद्युम्न। जैसे कल परसों भागवत कक्षा में कमलोचन प्रभु जी ने कहा था, बहुत लंबे तात्पर्य में लंबी कथा है कि वो सुद्युम्न एक बार शिकार करने गया था और मेरु पर्वत की तलहटी में। वो मेरु पर्वत हमको कोई नहीं दिख रहा है आजकल, बहुत दूर है मेरु पर्वत। उसकी तलहटी में शिकार करने गए थे और उसके तलहटी का जो क्षेत्र है उसका नाम है इलावृत वर्ष और उसके अधिकारी भगवान शंकर है। तो शंकर पार्वती रमण कर रहे थे, उसी समय ऋषि लोग जा रहे थे, तो उन्होंने पार्वती जी को किसी विषम स्थिति में देखा। और प्रत्येक पति अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। भगवान शंकर ने सोचा, यदि इस समय हम उमा को प्रसन्न नहीं करेंगे तो उमा दुखी हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने उमा को प्रसन्न करने के लिए कहा, यह प्रविश्यत, यह अत्र प्रविश्यत सवै योषित भवत। आज से लेकर के जो भी यहाँ कोई प्रवेश करेगा सवै योषित भवत। संस्कृत में स्त्री को कहते हैं योषित, वो आज से स्त्री बन जाएगा। तो भगवान शंकर के वाक्य के अनुसार सुद्युम्न जो पुरुष था वो स्त्री बन गया और उनके जो घोड़े थे वो सब घोड़ी बन गए और उनके जो सेना सब थे तो वो सब सेना जो थे ना सब लेडी, सब होमगार्ड बन गए, है ना, सब लेडी लेडी सैनिक बन गई सब। तो सुद्युम्न जो था वो भी स्त्री, अब उनका सब परिवर्तन हो गया, उनके मूछे जो थी ना सब प्लेन हो गए, किसी के पास में मूछे नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी, अब सब स्त्री के रूप। अब ये देखिए कितनी विचित्रता है, इसको आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। हम ये बात को, इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि कमजोर है। मुसलमान लोग कभी इस बात को विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि गोमांस खाते हैं। जिस लोग का भोजन, जिसका भोजन सात्विक नहीं है वो, उसकी बुद्धि कभी भी सात्विक नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभे विप्रमुख्या। बोले जिनका भोजन शुद्ध नहीं है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है उसको मोक्ष कहां से होगा। इसलिए हम वैष्णव जन हर एक के परिवार में भोजन नहीं करते। जो परिवार दीक्षित है, जो परिवार महामंत्र जप करके भोजन बनाते हैं, उसी के घर में हम लोग भोजन करते हैं। यही भाव है, यही अन्न की शुद्धि है। और दूसरी बात है, उसका धन अन्याय से उपार्जित नहीं होना चाहिए, जायज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मदिरा की फैक्ट्री है और वो उसने साधु सेवा कर ली, उससे क्या होगा। सत उपार्जित धन होना चाहिए और वो धन श्रीहरि को समर्पित होना चाहिए, तब उससे हरि प्रसन्न होंगे। मिथ्या कह करके झूठ बोल करके जो अन्न आता है उसे हरि प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ये भाव है। तो मुसलमान लोग कभी भी नहीं समझ सकते हैं, हिंदू भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनका अन्न शुद्ध नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति प्रभुपाद जी के नियमानुसार चार नियमों का पालन करता हुआ, हरिनाम का जप करता हुआ इस भागवत ग्रंथ का अध्ययन करेगा, केवल वही व्यक्ति इस भागवत को समझ सकता है। इसीलिए श्री मनु महाराज जी के बात के अनुसार ये सब घटना घटी, वशिष्ठ ने ये सब कहा, तो आज सुदिम्न उस बनबन भटक रहा है स्त्री बन करके। इतने में और एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? उस समय चंद्र के पुत्र जो बुद्ध है, वो बुद्ध कभी कभी भ्रमण करते हैं। बड़े लोगों के जो लड़के होते हैं ना, वो कभी कभी घुमा करते हैं। उनके पास पैसा बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, वो आज फ्लाइट टिकट करते हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली से करते हैं लंदन के लिए, लंदन से करते हैं न्यूयॉर्क के लिए, तो उनके पास बहुत पैसा होता है। हमारे एक भक्त हैं तो हम जानते हैं, उनके पास इतना पैसा है वो बहुत घूमता है। उसके पिताजी कहते हैं तुम घूमते रहना, जब तक हम हैं ना, पैसे की किस चीज की कमी नहीं है। अब वो फिर इंडोनेशिया चला जाता है, फिर पैसा लेकर घूमता है, बस कभी भी आता है घूमते रहता। ऐसे पिताजी को पाने वाले पुत्र बड़े भाग्यशाली है। ठाकुर जी कृपा करे ऐसे पिताजी प्राप्त हो जाए, उनको पैसे देते रहे और घूमता रहे। पर ऐसे पिताजी अच्छे नहीं है। पुत्र तो अच्छे हैं पर पिता अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा को दे करके वो पुत्र को बर्बाद कर रहा है। पिता वही है जो उनको कृष्ण की तरफ मोड़ दे, नहीं तो वो साक्षात यमराज है। ये भाव है। इसलिए श्री सुदिम्न जी जो भ्रमण कर रहे हैं, तो चंद्र के पुत्र हैं, बड़े घर के संतान है, वो भी घुमा करता था। उसने देख लिया कि बढ़िया लड़की घूम रही है जंगल में। उसने पूछा, उस चकमे भगवान बुद्ध, भागवत में है चकमे भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध ने कहा कि इसके साथ अगर मेरी ब्याह हो जाए ना बहुत अच्छा रहेगा। तो वो जो लड़की थी सुदिम्न, जो इला, वो लड़का था पर वो लड़की हो गई। तो उसने कहा भाई ये लड़का तो बहुत सुंदर है। बुद्ध भगवान चंद्रमा कितना सुंदर है, चंद्रमा जितना सुंदर है चंद्रमा का लड़का बुद्ध वो ही उतना सुंदर है। तो लड़की ने लड़के को देखा और लड़के ने लड़की को देखा, बस दोनों में बात हो गई। दोनों का गांधर्व्य मत में विवाह हुआ और उससे सुदिम्न का गर्व, वो सुदिम्न कहना नहीं चाहिए, अब जो भी है उस बालिका उसका गर्भ ठहरा और उसी से पूर्ववा की उत्पत्ति हुई। हाँ, इसीलिए चंद्रवंश उत्पन्न हो गया। चंद्र का पुत्र हुआ बुद्ध और बुद्ध का पुत्र हुआ पूर्ववा, इसीलिए चंद्रवंश की उत्पत्ति ऐसे हो गई। फिर आगे चल के आप जो देखेंगे पूर्ववा से कैसे जजाति वगैरह आते हैं चंद्रवंश, वरना वंश एक ही है सूर्यवंश। ये कहने का तात्पर्य यही है, चकमे भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध से ही चंद्रवंश शुरू हो गया। अच्छा, ये देख करके वो जो राजा थे, राजा की स्मृति आ गई। राजा ने कहा हमारे गुरुदेव बड़े शक्तिशाली है, भले ही हम स्त्री रूप में, वैसे स्त्री बनना अच्छा नहीं है। शास्त्र कहता है ज्यो ही कोई स्त्री बनकर के आती है उस पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। इसलिए प्रत्येक मां भी पुत्र चाहती है और प्रत्येक पिता भी पुत्र चाहता है, क्योंकि उस सत्र में हमने कहा था कि स्त्री जन्म से ही उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा, इसीलिए उनको रजदर्शन होता है। ये रजदर्शन और कुछ नहीं है, ब्रह्म हत्या है। इसीलिए उस समय कहा गया ना तो माताएं उस समय किसी को देख सकती है, ना भोजन बना के देश खिला सकती है। जो पुरुष उस काल में भोजन करता है वो बड़ा पापी है। इसलिए द्रौपदी जब वो रजस्वला थी उसको एकांत स्थान में रखा गया था। हम भी जानते हैं कभी प्रचार में, कानपुर में एक व्यक्ति है, कई लोग हैं उस समय इतने गंभीरता में वो पत्नी को रखते हैं, वो किसी का ना तो दर्शन करती है ना भोजन बनाती है, उनके माँ पिताजी भोजन बना के उनको खिलाते हैं। तो उस रजस्वला के समय दुशासन गया था और द्रौपदी ने आपत्ति भी की थी, दुशासन इस समय पुरुष का स्पर्श निषेध है, तू हमें नहीं ले जा सकते। पर दुशासन कहां था, वो तो दुष्ट था ही था, तो वो केस आकर्षण करके ले आया था। तो स्त्री हो गई थी सुदिम्न, वो स्त्री सुदिम्न हो गए थे, तो उन्होंने अपने को अच्छा नहीं माना, उसको अगर स्त्री रूप अच्छी होती तो सुदीम ने कहते बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, हम इसी डिजाइन में रहते। इस पर माताओं को ये खेद नहीं हो रही है कि हमको ब्रह्महत्या का दोष लगा है, फिर भी वो इतना डिजाइन बनाती है ताकि संसार को मोहित करती है। अरे भैया डिजाइन क्यों बनाती हो, ब्रह्महत्या लेके तो चल ही रहे हो। इसलिए ज्यादा संताप होना चाहिए, इसलिए माताओं को ज्यादा भजन करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि भैया लोग प्रभु जी लोग 16 माला जप करते हैं तो माता जी लोग 32 माला का जप करें, यदि ये 32 करते हैं तो वो 1 लाख कर दें। इसीलिए ये सब भाव रखना चाहिए। तो सुदेव को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने गुरु का स्मरण किया, तो वशिष्ठ जी का स्मरण होते ही वशिष्ठ जी आए तो उन्होंने देखा, अरे जिस लड़की को मैंने लड़का बनाया था तो उनका उनकी दशा फिर ऐसी हो गई। तो उन्होंने सह शंकरम उपधावत, उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, दो बार विष्णु की आराधना हो गई, अब फिर विष्णु के पास जाएंगे, उन्होंने हमें डांट लगा देंगे। फिर वो शंकर के पास चले गए। शंकर भी बड़े दयालु होते हैं, पर शंकर के लिए एक बड़ी घड़ी संधि समय, एक बड़ा घड़ी संधि समय आ गया, क्योंकि उन्होंने ये वरदान दे दिया था पार्वती जी को, यह अत्र प्रविशित सा योषित भवत, जो इस जंगल में आएगा वो स्त्री पद को प्राप्त करेगा। अब वशिष्ठ ने उनकी आराधना करी, उपधावत माने शिष्य वे, माने उनकी तपस्या करी, उनकी स्तुति करी, भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। अब शंकर क्या करे, अब शंकर क्या करे, उनके लिए एक बड़ा संकट का समय आ गया। क्या संकट आ गया, यदि वशिष्ठ के वचन को रक्षा करते हुए शंकर वरदान दे देते हैं कि सुदिम्न पुनः पुरुष रूप को धारण कर ले तो अपना वचन झूठा हो जाएगा, है ना। देखिए वचन के प्रति कितनी जागरूकता है, वचन झूठा ना हो जाए इसलिए पुरुष अपनी जान दे देता है। पर अभी का वर्तमान का क्या हाल है, रघुकुल रीति सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। वचन चले जाए किसी भी हालत में हमारा प्राण बच जाए, परंतु सूर्यवंशी राजा ऐसे झूठे नहीं होते थे। उनकी ये शर्त संकल्प, उनका संकल्प था कि भले ही हम मर जाए पर वचन झूठे ना हो जाए। तो भगवान शंकर के लिए एक संकट का समय था, उन्होंने कहा ठीक है हमारा वचन भी रह जाए और तुम्हारा काम भी पूरा हो जाए, ब्राह्मण का वचन भी रह जाए, तो तुम्हारा ये जो शिष्य है गोत्रज, गोत्रज माने शिष्य, तो ये 1 मास तक स्त्री रहेगा और 1 मास तक पुरुष रहेगा, जो इतिहास में ना भूतो ना भविष्यति। ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है कि 1 महीना फेमाइन जेंडर और 1 महीना मैस्कुलाइन जेंडर में रहा, 1 महीना दाढ़ी मूछे उगेंगे 1 महीने में बिल्कुल प्लेन हो जाएंगे, उनको उस नाई के पास बिल्कुल नहीं जाना पड़ता, क्यों जाएगा, 1 महीने में ठीक ठाक है। ये कितनी अद्भुत बात है, 1 महीना स्त्री, परंतु प्रजाओं को बहुत अच्छा नहीं लगता था। शास्त्रकारों ने कहा, चक्रवर्ती ने, श्रीधर ने, सब लोगों ने लिखा है, वो निरीयावस्थानत्वत, वो राजा जब स्त्री बन जाते थे ना उनको अच्छा नहीं लगता था, वो एकांत में रहते थे, बोलते थे कोई हमारे स्त्री रूप को ना देखे। फिर प्रजा कभी आती थी अपनी आपत्ति गुहार लगाने के लिए तो उनके गुहार सुनने वाला कोई नहीं होता था, इसलिए प्रजाओं को अच्छा नहीं लगता था। ऐसा नहीं कि मंदिर का प्रेसिडेंट बन जाए और 2-4 महीना कहीं घूमने चले जाए, ये तो भारी दिक्कत है, कहीं समस्या आ जाएगी। इसीलिए जो राजा बनेगा, जो अधिकारी बनेगा, उसकी उपस्थिति उस स्थान में सदैव रहना चाहिए। कभी कभार चला गया तो बात दूसरी है, नहीं तो हर महीने में 6 महीने स्त्री बनेगा 6 महीने पुरुष बनेगा, वो बात अच्छी नहीं है। तो राजा को अच्छा नहीं लगा। राजा प्रतिष्ठानम प्रति, इसलिए प्रतिष्ठानम प्रतिष्ठति इति स प्रतिष्ठान, माने जो जगह में चिपक करके रहे उसी का नाम है प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठति। बिल्कुल हम इस मंदिर के अध्यक्ष है तो इसी मंदिर में ही रहेंगे। प्रतिष्ठानपति सुदिम्न, उनको अच्छा नहीं लगा, आगे चल के उनके कई उत्कल गए नाम से लड़के हुए, पुत्र जन्म हुए, फिर वो समय आने पर अपने पुत्रों पर कार्यभार दे करके वो श्री हरिधाम को प्रस्थान कर लेते हैं। इस प्रकार से इस प्रसंग इस अध्याय को समापन कर दिया और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, इसमें कोई टीका विका है नहीं और तात्पर्य भी है नहीं, यहीं पर ये प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है नवम स्कंद का। तो इसमें बहुत कुछ सीखने लायक बात है कि सबसे मुख्य बात है यदि हम श्री हरि के शरण, दो बातें हैं, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और आशा के किरण एकमात्र गुरु और हरि है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात नगति कुतोपी। ये दो बात यदि हम इस अध्याय से सीख लेते हैं तो भागवत का अध्ययन हमारा यथार्थ होगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। कोई प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं समान गोत्र नहीं मिलते। ये तो हमने कहा ना कि ये उनकी या तो उनका हिसाब किसाब किताब में कहीं कमी है ना। जैसे हमने देखा है एक ज्योतिष एक एक के एक दो एक परिवार है, एक दंपति है, उसकी काफी सारी लड़कियां हो गई, काफी सारी माने दो चार लड़कियां हो गई। तो उन्होंने बेचारा बहुत पूजा पाठ किया तो उसने उसका एक लड़का हुआ, पर दुर्भाग्य की बात है उसका लड़का 10-12 दिन के बाद मर गया। हम एकदम आंखों देखा हाल हम कह रहे हैं। तो वो जो ज्योतिष है 21वें दिन है वो जन्म पत्री लेकर के आया था। तो हम लोग सब गांव में ऐसे घूम रहे थे तो हमने कहा दंडवत जी, हाँ जी हाँ, मैं बोला आपको बहुत बढ़िया दक्षिणा मिलेगी अभी, क्योंकि आप जाइएगा उसका लड़का बहुत अच्छा है, उनका आज उत्सव चलेगा। तो उसने मैंने कहा जन्म पत्र में क्या लिखा हुआ है, ना बालक बड़ा दीर्घायु है, 108 साल जीवित रहेगा और उसके जीवन में बहुत कुछ है, बहुत अर्थ कमाएगा, बहुत कुछ अच्छा रहेगा। मैंने कहा आपको तो बहुत मोटी दक्षिणा मिलने वाली है अभी, एकदम आंखों देखा हाल है। तब तक उसके बच्चा तो गुजर चुका था 10-12 दिन पहले ही। अब वो जाकर के जब आया हम लोग ताली बजा करके हंसने लगे। मैं कहा महाराज कितनी दक्षिणा मिली? तो उनका जो हिसाब किताब होता है ना गलत होता है। नीलांबर चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति अगर हिसाब किताब कर देगा तो उनको तो पक्का पता था, है ना, पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त षडोन्नत त्रिहस्व प्रथु गंभीरो द्वात्रिंशो लक्षणो महान। प्रत्येक व्यक्ति में 32 लक्षण होते हैं महान तक के, उनमें से कई कई लक्षण किस किस व्यक्ति में है, जिनकी लंबी नाक है वो महापुरुष है, वैसे सभी की सब, जिसकी चपेटी नाक है वो अच्छी नहीं है, नाक लंबी होनी चाहिए। आपने देखा नहीं अब्दुल गफ्फर खान की नाक कितनी लंबी थी, है नहीं? इसलिए चाइना के लोग सभी दुर्भाग्य चिपकली खाते हैं, सब चपेटी नाक वाले हैं। चाइना भाई ना के चाइना के उसके लोग सब चपेटी नाक वाले, सब दुर्भाग्य है। भारत के सब लंबे नाक वाले होते हैं, ऐसा है, ऐसा कहा गया है। और माताओं में नाभि ऊपर को उठना अच्छा है, पुरुष में गहरी नाभि होना अच्छा है, कई लक्षण है, केस मुलायम होना अच्छा है। ये 32 फिर ये तो फिर और एक क्लास हो जाएगा, कभी फिर समय आएगा चर्चा करेंगे, अगर हरि गिरधारी जी की इच्छा हो फिर आगामी वर्ष चर्चा होगी किसी प्रसंग पर। तो गोत्रज का जो हिसाब किताब है वो ठीक से नहीं है। आप देखेंगे जहां जहां ठीक ठीक हिसाब है, कहीं शांडिल्य गोत्र हैं, कहीं भरद्वाज गोत्र हैं, जैसे वैष्णव प्रभु के साथ हमारी बात होती है, उनका गोत्र है भरद्वाज गोत्र है, है ना, ये सब कई गोत्र हैं, आप पूछ लीजिएगा तो पता चलेगा। तो गोत्र के रूप में कहा गया या तो शिष्य या तो वंश, क्योंकि जब भी अध्ययन होता था वेद का तो तीन प्रकार के लोग ही अध्ययन करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र तक नहीं मिलेंगे। हाँ आपका कहना एक प्रकार से सही हो सकता है, क्योंकि कलौ शूद्र संभवा, शूद्रों का गोत्र नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया। वेद अध्ययन करते तो वंश परंपरा हो जाती, वो कह देते कि हमारा गोत्र शांडिल्य है, गर्ग है, भारद्वाज है, ये है, वो है, वो है, सबको पता लग जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? अच्छा, लाल गोविंद जी बैठे हैं, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप कितने बजे आए थे शुरू से? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। क्या है? हाँ जी, शिष्य परंपरा और एक जन्म परंपरा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, गुरु ग्रहण करते हैं आध्यात्मिक शिक्षा के लिए। ये जो परंपरा, ये आध्यात्मिकता के साथ आध्यात्मिकता हो सकता है, जैसे पांडवों के गुरु है कृपाचार्य, है नहीं, परंतु उनके मार्गदर्शक रहे कृष्ण, है ना। तो इसलिए हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है, जब दीक्षा देते हैं उस समय गोत्र परिवर्तित होता है, उसको कहते हैं अच्युत गोत्र। अच्छा, तो फिर भी हाँ, एक अच्छा प्रश्न है। जहां तक विवाह का संबंध है उस पर विचार होना बहुत जरूरी है। देखा गया अंधाधुंध विवाह में रिजल्ट, परिणाम अच्छा नहीं आता। भक्ति करने के लिए जनेऊ को तोड़ दिया जा सकता है, परंतु कर्मकांड समाज में रहने के लिए जनेऊ की आवश्यकता है। विवाह करना मतलब सामाजिक रीतिनीति को स्वीकार करना, वैष्णव बनना मतलब सामाजिक रीतिनीति को तोड़ देना। पर वर्णाश्रम विवाह केवल सन्यास के सन्यास तक कार्यकारी है, अवधूत स्तर तक कार्यकारी नहीं है। सन्यास, जहां तक वर्ण धर्म का विभाग, उससे ऊपर स्तर के लोग हैं ऋषभ देव तथा सुखदेव गोस्वामी, परंतु जहां तक सन्यास है वो भी वर्णाश्रम के अंतर्गत है। इसलिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए जो इच्छुक है, भक्त होते हुए भी गोत्र आदि की परीक्षा होना आवश्यक है। देख, ठीक है, जैसे भजन करती, ठीक है, भजन करती है, बहुत अच्छी बात है। तो भजन करते करते अब उनके कुछ दूसरी वृत्ति है, वो दूसरी वृत्ति तो इतनी जल्दी नहीं छूटेगी। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने प्रमाण दिया, देखिए गीता में उन्होंने कहा, अर्जुन तुम अभी कहे तो भिक्षा मांगोगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमसे कह के जाओ भिक्षा मांगने के लिए, जैसे तुम यहां से जाओगे तुमको कोई कटु वचन कहेगा तुम धनुष से बाण छोड़ दोगे, तुम्हारी क्षत्रिय वृत्ति रुकेगी नहीं। वहां पर आगे कहा 18 अध्याय में कि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणः, बोले हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव के, स्वभाव माने प्रकृति, नेचर, हर एक व्यक्ति अपने नेचर के बस में है, वो उस नेचर को त्याग नहीं कर सकता। वो स्वभाव का परिवर्तन के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, एकमात्र विश्वामित्र के लिए संभव है, और ऐसा न भूतो न भविष्यति। वो क्षत्रिय राजर्षि थे और ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी। हम कहां तपस्या करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, फिर दूसरे दिन आने तक वो माला ठंडा हो जाता है नहीं। तपस्या माने तपाना, उस शक्ति को प्राप्त करना, 16 माला जप करके फिर कुसंस्कार सारे आ जाते हैं। इसलिए विवाह आदि में गोत्र आदि का परिचय करना बहुत आवश्यक है। अब देखा भी गया है, चैतन्य महाप्रभु का जब विवाह हो गया, चैतन्य महाप्रभु से अच्छा वैष्णव कौन मिल सकता है? नहीं मिलेगा ना, भक्त के रूप में। भगवान का पक्ष हम नहीं ले रहे हैं, भक्त के पक्ष में चैतन्य महाप्रभु भक्त है कि नहीं। उन्होंने जब विवाह किया, उनका जो मध्यस्थ था उनका नाम था बनमाली घटक। घटक माने बड़ा ज्योतिर्विद था, वो अच्छा जानता था कि इसके साथ ये बनमाली के, ये चैतन्य के साथ विष्णुप्रिया का वो जोड़ी अच्छी जमेगी। अन्यथा चैतन्य महाप्रभु जाने के पश्चात विष्णुप्रिया एक एक दाना गिन गिन करके जप करती थी और उसी को पका करके खाती थी। ये गोत्रों का मिलना है, जैसा पति और वैसी पत्नी। अन्यथा कोई होता, महाराज कई बार कहते हैं ना, वो बात हमें आज भी याद है, बोले कई बार वो विदेश गए, एक व्यक्ति हमेशा कहता था आई लव यू, सुना है, वो अपनी पत्नी से कहता था आई लव यू। तो महाराज उनके घर में 10-25 मिनट तक बैठे, वो 25 मिनट में कम से कम 50 बार कह दिया आई लव यू, आई लव यू। तो महाराज ने कहा हम तो मंत्र देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, पर ये बड़ा नया सा मंत्र है, आई लव यू। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा, चुपचाप महाराज जी उनको बुला के पूछे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आई लव यू बहुत अच्छी बात है, कभी कह दिया पत्नी होने कहना चाहिए, परंतु तुम 10-25 मिनट में 50 बार कह रहे हो, ये क्या बात है। महाराज जी के किसी कैसेट में सुन लीजिएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज कहां तक कही, यदि मैं इनको आई लव यू नहीं कहूंगा तो डेफिनेटली सी विल लीव मी। समझ रहे, यदि मैं उसको आई लव यू नहीं कहूंगा तो इमीडिएटली सी विल लीव मी, माने वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, इसीलिए उसको मना मना करके मेरे पास रखने के लिए मैं कहता हूं आई लव यू। समझे ना। तो श्री विष्णु प्रिया के जीवन में कितनी दुर्गति है, वो कौन था भाई, विवाह हो गया, कोई ना संतान है और वृद्धा विधवा माँ है, और कोई रोजगार करने वाला तो था ही नहीं, महाप्रभु सन्यास लेके चले गए, इसी का नाम है सन्यास। तथी लागे कृपाद्र प्रभु करी लो सन्यास। महाप्रभु को सन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनके पांडित्य की गरिमा के सामने बड़े बड़े दिग्गज भी झुकते थे, परंतु उन्होंने देखा कि सन्यास लेने से इन लोगों का कल्याण होगा, इसीलिए उन्होंने अपना मां का त्याग किया और विष्णुप्रिया जैसे सर्वोच्च सती पतिव्रता रमणी का त्याग किया। कहा गया है वनमाली घटक, इसलिए विवाह आदि, यद्यपि हम सब वैष्णव है तो विवाह आदि में मेलक, उसको 10 मेलक कहते हैं, राशि है, नक्षत्र है, और भी कई लग्न वगैरह सब है, वो सब देख लेना चाहिए। देखा गया कि देव मानव और राक्षस, देव मानव राक्षस, यदि राक्षस के पास कहीं देवी पड़ जाती है तब तो हाल बेहाल है कि नहीं। तो इसको प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा, प्रतिलोम विवाह स्वीकार्य नहीं है, अनुलोम विवाह स्वीकार्य है, परंतु मेलक होना आवश्यक है। हरे कृष्ण। हाँ जी, समय हो गया, हमको कपड़े समेटने हैं। अच्छा, अच्युत गोत्र, जय राम जी की है ना। श्री कृष्ण ने कहा जिनका कोई रक्षक नहीं है उनका रक्षक हम है, और इसका प्रमाण उन्होंने पुरुषोत्तम मास में दे दिया, 12 महीने उत्पन्न हो गए, 13वां महीना नहीं था तो 12 महीने के 12 अधिष्ठात्र देव बन गए। तो 13वां महीना रोता रोता श्री कृष्ण के पास गया, प्रभु मुझे कोई अपनाने वाला नहीं है। तो पुरुषोत्तम भगवान ने कहा मैं तुझे अपनाता हूं, इसीलिए पुरुषोत्तम मास की इतनी श्रेष्ठता है, इसलिए पुरुषोत्तम मास को श्री भगवान विष्णु ने अपनाया, और पुरुषोत्तम मास में जो भक्ति आदि की जाती है वो अनंत गुणा फल देने वाली है। ठीक है, जय श्री राधे, श्रील प्रभु पाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।
हरे कृष्ण। सभी बैठे रहिए, बड़े आभारी हैं।